डॉक्टर डेविड टर्नर, गॉस्पेल ऑफ जॉन, सत्र एक, परिचय भाग एक। 2024, डेविड टर्नर और टेड हिल्डेब्रांट। नमस्ते, मेरा नाम डेविड टर्नर है और हम जॉन के सुसमाचार पर बाइबल इलर्निंग का एक कोर्स करने के लिए ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन में ग्रैंड रैपिड्स थियोलॉजिकल सेमिनरी में हैं। इसलिए जॉन पर वीडियो पर 20 या उससे अधिक व्याख्यान आपके साथ साझा करना हमारे लिए खुशी की बात है। हम जिस दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे वह बहुविषयक होगा। अगर कुछ भी हो तो मैं हर काम में माहिर हूं और मैं इनमें से किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैं अनिवार्य रूप से आपके साथ कुछ ऐसे क्षेत्रों को साझा करने का प्रयास करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि जॉन के लिए महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए कभी कभी हम केवल पाठ का अनुसरण करते रहेंगे और केवल एक कथा प्रवाह का पालन करेंगे। कुछ समय हम पाठ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में उठने वाले विशिष्ट प्रश्नों से निपटेंगे। अन्य समय में हम सांस्कृतिक मामलों और उस जैसी चीजों पर गौर करेंगे। हम पाठ को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन सभी विभिन्न उपकरणों का उपयोग करेंगे और कभी कभी मैं थोड़ा उपदेश भी दे सकता हूं और आज के लिए पाठ का अनुप्रयोग दिखा सकता हूं, कम से कम जैसा कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। तो हम यहां जॉन के परिचय पर दो सेट, दो व्याख्यानों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पहला साहित्यिक और धार्मिक मामलों से निपटेगा, दूसरा ऐतिहासिक और पाठ्य संबंधी मामलों से संबंधित होगा। इसलिए जैसे ही हम शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि अतीत में जॉन को चार गॉस्पेल में से एक के रूप में देखा गया था और चर्च में चार गॉस्पेल को इजेकील की पुस्तक के चार प्राणियों के संदर्भ में देखा गया था, जिन्हें अनुकूलित किया गया है प्रकाशित वाक्य अध्याय चार में सर्वनाशवादियों द्वारा भी। तो हमारे पास केल्स की पुस्तक से ये सुंदर प्रबुद्ध पांडुलिपियां हैं जो इन चीजों से संबंधित हैं। चार सुसमाचारों को एक बैल के चेहरे के साथ एक आदमी के चेहरे के संदर्भ में देखते हुए, यही बैल होगा, यह मानव होगा, यह शेर होगा और अंत में बाज होगा। हमें उकाब में दिलचस्पी है क्योंकि उन्होंने जॉन और जॉन के सुसमाचार को इसी तरह से देखा था। जब हम उत्तरी मिशिगन में घूमते हैं तो मुझे चील ढूंढना अच्छा लगता है। यह वह है जिसे मैंने कुछ साल पहले लुडिंगटन के आसपास देखा था। इसलिए चर्च ने यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य चार में चार प्राणियों के संदर्भ में चार सुसमाचारों के बारे में सोचा क्योंकि वे उन्हें स्वयं उन पुस्तकों की विशेषताओं के रूप में देखते थे। और जबकि इसमें थोड़ी भिन्नता है, उन्होंने जॉन के गॉस्पेल को ईगल के रूप में सोचा क्योंकि उन्हें लगा कि जॉन की क्राइस्टोलॉजी दुनिया भर में बढ़ गई है, खासकर जब उन्होंने प्रस्तावना पढ़ना शुरू किया। उन्होंने उस तरह से एक समग्र सुंदर परिप्रेक्ष्य के बारे में सोचा। तो जैसे ही हम शुरू करते हैं, हम सबसे पहले यह सोच रहे हैं कि जॉन किस तरह की किताब है। और मैं आपसे पूछता हूं, जब आप जॉन का सुसमाचार उठाते हैं और इसे पढ़ते हैं तो आप जॉन को कैसे पढ़ते हैं? आप अखबार कैसे पढ़ते हैं? अब हमारे पास समाचार पत्र नहीं है, इसलिए शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि समाचार पत्र क्या होता है। अब हमारे पास वेबसाइटें हैं और समाचार पत्रों के पास वेबसाइटें हैं। लेकिन ऐसा हुआ करता था कि हमारे पास ये पुरातन चीजें थीं जो हर शाम या हर सुबह अखबार कहलाती थीं और उनमें अलग अलग खंड होते थे। कुछ अखबारों का पहला पन्ना ऐसा होगा जहां आपको कथित तौर पर खबरें मिलेंगी। तब आपको संपादकीय मिलेंगे कि संपादकों, अखबार लिखने वाले लोगों ने समाचार के बारे में क्या सोचा। तब आपको कॉमिक स्ट्रिप जैसी चीजें मिलेंगी। तब आपके पास चीजें बेचने की कोशिश करने वाले वर्गीकृत विज्ञापन होंगे। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, अखबार के प्रत्येक हिस्से का अर्थ निकालने का अपना तरीका और अपना दृष्टिकोण था। इसलिए जब आप पहला पन्ना पढ़ रहे होते थे तो आपको लगता था कि आपको समाचार मिल रहा है, केवल तथ्य। जब आप संपादकीय पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अखबार के मालिक लोग आपको तथ्यों के बारे में सोचने के लिए क्या कह रहे हैं। जाहिर तौर पर कॉमिक्स ऐसी चीजें थीं जो आपको हंसाएंगी। और जब आप वर्गीकृत विज्ञापन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप वह पुरानी कार खरीदना चाहते थे या नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप वर्गीकृत विज्ञापनों को पढ़ते हैं तब की तुलना में जब आप मुख पृष्ठ पढ़ते हैं तो संभवतः आपकी सीखने की अपेक्षाएं भिन्न होती हैं, क्योंकि वर्गीकृत विज्ञापन आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहे थे और मुख पृष्ठ मूल रूप से सिर्फ ऐसा माना जाता था तुम्हें बताओ क्या चल रहा था। हम इसकी तुलना उन पुस्तकों के पुस्तकालय से करते हैं जो बाइबल और हमारे पास मौजूद विभिन्न प्रकार के साहित्य को बनाते हैं। बाइबल में हमारे पास कहानियां और ऐतिहासिक आख्यान हैं। शायद आप उनके बारे में इसी तरह सोचना पसंद करते हैं। हमारे पास कविताएं हैं, हमारे पास भविष्यवाणियां हैं, हमारे पास कहावतें और ज्ञान संबंधी बातें हैं, हमारे पास पत्र हैं, और हमारे पास ऐसे दर्शन हैं जो भगवान ने विभिन्न लोगों को दिए कि वह क्या कर रहा था और भविष्य में क्या करेगा। इसलिए जब हम सामान्य रूप से गॉस्पेल और विशेष रूप से जॉन के गॉस्पेल को देखते हैं तो हम पूछ रहे हैं कि इस पुस्तक का क्या अर्थ है। हम कथात्मक पुस्तकों को इस तरह से कैसे समझें कि वे जो करने का प्रयास कर रहे हैं उसका सम्मान करें। इसलिए जब गॉस्पेल की बात आती है तो हम एक तरह का प्रश्न पूछते हैं, क्या जॉन एक ऐतिहासिक पुस्तक है या एक धार्मिक पुस्तक। यह एक प्रकार का अतिसरलीकरण है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मामले की जड़ तक पहुंच जाता है, जैसा कि जॉन को आज कई जगहों पर देखा जाता है। तो क्या हम किताब को सिर्फ एक किताब के रूप में सोचते हैं जो हमें यीशु के बारे में डेटा जानकारी देती है, या वह किताब है जो हमें एक विशेष राजनीतिक या विशेष विश्व दृष्टिकोण पर ले जाने के लिए जानकारी पर एक स्पिन डालना चाहती है। यीशु के बारे में हो तो क्या जॉन एक ऐतिहासिक पुस्तक है या धार्मिक पुस्तक। और यदि आप मेरे साथ ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आप शायद अनुमान लगा रहे होंगे कि मुझे पता है कि वह अब क्या करने जा रहा है। वह कहने जा रहा है कि यह दोनों है। और हाँ, इसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसलिए जब हम जॉन के सुसमाचार की शैली के बारे में सोचते हैं तो कुछ अर्थों में इसमें ऐतिहासिक सामग्री होती है, लेकिन साथ ही इसमें धार्मिक जोर भी होता है। तो सवाल यह है कि जब जॉन की बात आती है तो यह सब कैसे काम करता है। जब हम जॉन के बारे में चार गॉस्पेल में से एक के रूप में सोचते हैं तो कई लोग कहेंगे कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जॉन सिनॉप्टिक गॉस्पेल की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण लेता है, क्योंकि सिनॉप्टिक गॉस्पेल थोड़े अधिक हैं। कई लोग कहेंगे ऐतिहासिक रूप से उन्मुख और जॉन का गॉस्पेल थोड़ा अधिक धार्मिक रूप से उन्मुख है, लेकिन मुझे लगता है कि यह देखा जाना बाकी है। इसलिए मैं चार गॉस्पेल को एक साथ एक शैली के रूप में सोच रहा हूं, और जाहिर तौर पर वे थोड़े अलग हैं, लेकिन उनमें मतभेदों की तुलना में अधिक समानताएं हैं, कम से कम मेरी राय में। जैसे जैसे हम यहां आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में और अधिक बात करेंगे। तो एक किताब जो सिर्फ इतिहास के बारे में है, इतिहास का एक इतिहास है, वह हमें सिर्फ घटनाएं दे रही है, बस हमें बता रही है कि क्या हुआ था। और ऐसी किताब का उद्देश्य बस आपको यह दिखाना है कि उस दिन क्या हुआ था। और उस जैसी किताब का तनाव खोजपूर्ण है। यह बस आपको बता रहा है कि क्या हुआ। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें अतीत को उसकी तथ्यात्मकता के संदर्भ में देखा जाता है, जैसे कि वह घटित हुआ। एक किताब जो धर्मशास्त्रीय है वह हमें घटनाओं के महत्व के बारे में और अधिक बताती है, जो हुआ उसके बारे में और जो कुछ हुआ उसकी व्याख्या करने के तरीके के बारे में अधिक बताती है। इसलिए यदि आप मुझे दो शब्दों जांच और व्याख्या के साथ थोड़ा खेलने दें तो हम इस चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सवाल यह होगा कि जब सुसमाचार लेखकों ने यीशु के जीवन की घटनाओं को देखा और उन्हें लिखा तो क्या वे मुख्य रूप से केवल अतीत की जांच कर रहे थे या वे वर्तमान के लिए अतीत की व्याख्या कर रहे थे दर्शकों के लिए जिन्हें वे शिक्षा देना चाहते थे और यीशु के बारे में जानकारी में मदद करने के लिए। और मैं सोचता हूं कि हमें यह कहना होगा कि दोनों गतिविधियां चल रही थीं। ल्यूक की गॉस्पेल की प्रस्तावना से हमें इस बारे में काफी जानकारी मिलती है कि कैसे उन्होंने बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक शोध और उन लोगों पर नजर डालकर अपना काम किया जो वास्तव में वहां थे। वह उन्हें ऑटोप्टाई या प्रत्यक्षदर्शी कहता है। वह इस बारे में बोलते हैं कि उन्होंने परंपराओं को कैसे आगे बढ़ाया, मुझे लगता है, लिखित और मौखिक दोनों तरह से। और इसलिए वह यीशु के बारे में पहले से मौजूद जानकारी में अपनी जानकारी जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो जाहिर है हमारे पास जॉन के सुसमाचार में ऐसा कोई बयान नहीं है। जैसा कि हमने पुस्तक पढ़ी है, कथित तौर पर जॉन का लेखक यीशु का साथी था, न कि ल्यूक जैसा कोई व्यक्ति जो नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि जब गॉस्पेल की शैली और जिस तरह से वे सामने आते हैं उसकी बात आती है तो जांच और व्याख्या के ये दो विचार इस संबंध में सहायक होते हैं। इसलिए सुसमाचार हमें केवल यह नहीं बता रहे हैं कि यीशु के साथ क्या हुआ था। वे सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या हमें यीशु के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है और उसके बारे में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है जो हमें ऐसा करने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक और धार्मिक पक्ष के अतिरिक्त एक अन्य कारक जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वह है साहित्यिक पक्ष। यह स्पष्ट है कि गॉस्पेल, यहां तक कि जब आप पहले तीन गॉस्पेल सिनोप्टिक्स को देखते हैं तो वे कुछ मायनों में भिन्न होते हैं और जिस तरह से वे यीशु की कहानी बताते हैं उसे थोड़ा अलग बनाने के लिए उन सभी की अपनी तकनीक होती है। और इसलिए कुल मिलाकर कहानी वही है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत सुसमाचारों में उनका अपना अलग महत्व है। तो साहित्यिक रचनात्मकता का मुद्दा है। यह विशेष रूप से जॉन के साथ सच है, जहां जॉन के बारे में कई बातें हैं जो सिनोप्टिक गॉस्पेल में यीशु की कहानी को बताए जाने के तरीके से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। तो जॉन के गॉस्पेल में मुझे लगता है कि हमें बहुत आजादी है और लोग पहले से ही स्वीकार कर रहे हैं कि यह एक खूबसूरत किताब है। यह एक ऐसी किताब है जो सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन है और यह एक ऐसी किताब है जिसका स्पष्ट रूप से एक साहित्यिक एजेंडा है। किताब के अंत में जॉन हमें बताता है कि वह हमें यीशु के बारे में बहुत सी बातें बता सकता था, लेकिन उसने जो कुछ लिखा है उसे वह उन चीजों तक ही सीमित कर रहा है जिन्होंने लोगों को विश्वास की ओर प्रेरित किया है ताकि उन्हें जीवन मिल सके। इसलिए वह एक विशेष एजेंडे पर जोर देता है जो उसे यह चुनने के लिए प्रेरित करता है कि क्या चल रहा था और उसके अनुसार अपनी पुस्तक तैयार करता है। इसलिए सामान्य तौर पर गॉस्पेल और विशेष रूप से जॉन के गॉस्पेल क्या हैं, इसका वर्णन करने का प्रयास करने के लिए हम इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर सकते हैं कि गॉस्पेल रचनात्मक रूप से हमें यीशु के जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं का धार्मिक महत्व बताते हैं। वे केवल हमारे लिए जानकारी प्रदान करने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए हैं जो शिक्षा प्रदान करेगी और अंतः मसीह के जीवन में परिवर्तन लाएगी। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम शायद यह स्पष्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ गॉस्पेल के जॉन के बारे में जॉन अध्याय 13 के परीक्षण मामले के साथ क्या बात कर रहे हैं। यीशु के जीवन में एक बहुत ही मार्मिक क्षण में जॉन 13 में शिष्य उसके साथ रात्रि भोज में थे और उसने अभी अभी उनके पैर धोए और उन्हें परेशान करने वाली खबर दी कि कोई चीज उसे गहराई से परेशान कर रही है कि उनमें से एक उसे धोखा देगा। आपने शायद यह कहानी पहले भी पढ़ी होगी। तो जैसे ही वह ऐसा कहता है, पीटर, जो हमेशा बातों में अपनी नाक डालता है, हमेशा बोलता रहता है, जानना चाहता है कि यह किसने किया। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय शिष्य से, जो मेरी दृष्टि में जॉन है, जो यीशु के सबसे निकट है, उससे यह पूछने को कहा कि यह किसने किया। तो यीशु ने उन्हें एक अंदरूनी तरीके से यह समझाते हुए कहा कि यह वही है जिसे मैं भोजन का एक निवाला देता हूँ। इसलिए जब यीशु यहूदा को भोजन का एक विशेष निवाला देते हैं, तो यीशु के यह कहने के बाद कि तुम जो कर रहे हो यह जल्दी से करो, यहूदा चला जाता है। हमारे पास जॉन अध्याय 13 श्लोक 30 में यह बहुत दिलचस्प पाठ है जो कहता है, जैसे ही यहूदा ने रोटी ली वह बाहर चला गया और रात हो गई। यह रात थी। इसलिए यदि हम यूहन्ना को केवल एक ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में सोचते हैं तो हम कह रहे हैं ठीक है, यूहन्ना ने हमें यहाँ उस सटीक समय के बारे में बहुत सी विशिष्ट जानकारी दी है जब यहूदा यीशु को धोखा देने के लिए निकला था। उसने ऐसा रात में किया। सूरज डूब चुका था और हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमें सटीक कालानुक्रमिक डेटा दे रहा है कि किस तरह से विश्वासघात शुरू हुआ। दूसरी ओर यदि रात का अधिक काव्यात्मक या रूपक अर्थ है, तो हमें इसके बारे में इस अर्थ में सोचना चाहिए कि यहूदा एक वंचित व्यक्ति था। जुडास को उसके आंतरिक व्यक्तित्व में परिवर्तनकारी तरीके से सुसमाचार की रोशनी से अवगत नहीं कराया गया था। वह स्पष्ट रूप से कुछ हद तक इससे परिचित हो गया था, लेकिन वास्तव में इससे बदला नहीं था, अन्यथा उसने यीशु को धोखा नहीं दिया होता। तो यह श्लोक हमें क्या बता रहा है? क्या यह मूल रूप से हमें बता रहा है कि यहूदा यीशु को धोखा देने के लिए कब चला गया, या क्या यह हमें बता रहा है कि यहूदा किस प्रकार का व्यक्ति था, या यह दोनों में से कुछ है? क्या यह मुख्य रूप से हमें कालक्रम देने के लिए है और हम इससे थोड़ा सा नैतिक अनुप्रयोग प्राप्त कर सकते हैं, या यह मुख्य रूप से हमें यह बताने के लिए है कि जुडास किस प्रकार के व्यक्ति के साथ था? आप जानते हैं, हमें कालक्रम का थोड़ा सा ज्ञान मिलता है इसके बारे में जानकारी। तो हम इस तरह के प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इस सुसमाचार के समग्र प्रवाह और शब्दावली के उपयोग के समग्र तरीके के प्रकाश में इस तरह के प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो यदि समग्र रूप से जॉन में रात और प्रकाश और अंधेरे और चमक शब्दों का उपयोग कालानुक्रमिक तरीके से सख्ती से आपको यह बताने के लिए किया जाता है कि दिन का कौन सा समय है, तो शायद आप कहेंगे कि यह केवल एक ऐतिहासिक कथन है और यह हमें इस बारे में जानकारी देता है कि यहूदा को यीशु को धोखा देने के लिए कब छोड़ा गया था। दूसरी ओर अगर जॉन के सुसमाचार में हमें पता चलता है कि जॉन हमें अन्य चीजें सिखाने के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, शायद नैतिकता के बारे में चीजें, शायद धार्मिक सत्य के बारे में चीजें, तो हमें यह धारणा मिलनी शुरू हो जाएगी। यह निश्चित है कि जब यहूदा बाहर गया तो रात हो चुकी थी। यह कुछ ऐसा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यह थोड़ा संयोग है कि न केवल वह ऐतिहासिक रूप से रात में बाहर गया था, बल्कि आध्यात्मिक रोशनी की कमी वाले व्यक्ति के लिए यह गंदा काम करना उचित था रात में का। इसलिए जब आप सोचते हैं कि जॉन में प्रकाश और अंधेरे का उपयोग कैसे किया जाता है, तो हमें केवल जॉन अध्याय 1 में सोचना शुरू करना होगा। और सबसे पहली बात यह है कि यह प्रभु यीशु के बारे में बात करता है कि वह कहता है कि वह प्रकाश था और वह दुनिया में रोशनी लेकर आए, और रोशनी वहां के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। बाद में सुसमाचार में यूहन्ना अध्याय 8 श्लोक 12, जैसा कि आप शायद जानते हैं, यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह दिलचस्प है क्योंकि हमारे पास अध्याय 3 में एक आकस्मिक टिप्पणी है कि निकोडेमस नाम का व्यक्ति रात में यीशु के पास आया था। तो हम जॉन में इस तरह की चीजें होते हुए देखते हैं। मुझे यह भी आश्चर्य होगा कि क्या अध्याय 21 में, जहां हमारे पास वह आकस्मिक टिप्पणी है जो तब की गई थी जब शिष्य मछली पकड़ने गए थे, कि उन्होंने पूरी रात कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन जब यीशु भोर में आए तो उन्होंने तुरंत उन्हें बड़ी मछली पकड़ने में मदद की। शायद यह इसे थोड़ा बढ़ा रहा है। हो सकता है कि यह पूरी तरह से एक ऐतिहासिक विवरण है जिसे हमें दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जॉन की गॉस्पेल जैसी किताब में, जहां वास्तविक दुनिया में कई बार प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि इसे बहुत अधिक दबाया जा रहा है। फिर हम अध्याय 1 में जॉन के पहले पत्र में जोहानिन की सोच को जोड़ सकते हैं, जहां वह ईसाई जीवन के बारे में एक ऐसे जीवन के रूप में बात करता है जिसे प्रकाश में जीना चाहिए। यदि हम प्रकाश में चलते हैं जैसे वह प्रकाश में है, तो हमारी उसके साथ संगति है, और उसका खून हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। और जब हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन में काले धब्बे हैं, तो हमें अपने पापों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। सर्वनाश के बारे में सोचते हुए भी, जिसे जॉन के सुसमाचार पत्रों से जोड़ना उतना आसान नहीं है। आपको याद आएगा कि जैसा कि प्रकाशित वाक्य 21 और 22 विहित धर्म ग्रंथों का समापन करता है, यह भाषा के साथ ऐसा करता है जो कि पहले दो अध्यायों की बहुत याद दिलाता है। उत्पत्ति 1 और 2 में बाइबिल, उनमें प्रकाश पर जोर दिया गया है। आपको याद होगा कि हमें प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में बताया गया है कि नया यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिसे दीपक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना प्रकाश हैं, और सूर्य और चंद्रमा की भी आवश्यकता नहीं है वहां अधिक समय तक। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम न केवल जॉन के सुसमाचार में प्रकाश और अंधेरे का उपयोग करने के तरीके को ध्यान में रखते हैं, न केवल वहां, बल्कि पत्रों और यहां तक कि सर्वनाश में भी, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब यहूदा बाहर गया था और वह रात थी, यह एक ऐसा कथन है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से तथ्यात्मक रूप से सत्य, ऐतिहासिक रूप से सत्य मानूंगा। लेकिन जॉन हमें यहूदा की आध्यात्मिक स्थिति की भयावह प्रकृति के बारे में कुछ सिखाने के लिए उस ऐतिहासिक सत्यता पर निर्माण कर रहा है, और यह कितनी दुखद स्थिति थी, जैसे हम बाद में जॉन में सीखते हैं। इसलिए हम केवल सेंट ऑगस्टीन जैसे किसी व्यक्ति और उसके एक उपदेश में जॉन पर की गई टिप्पणी की ओर ही लौट सकते हैं। तो यहाँ हमारे लिए एक छोटा सा लैटिन पाठ है, एराट ऑटम नॉक्स, यह रात थी, और जो बाहर गया वह रात थी। यह ऑगस्टीन वल्गेट को उद्धृत कर रहा है। तो यहाँ उनकी टिप्पणी है, वह रात थी, और जो बाहर गया वह रात थी। इसलिए यहूदा ने खुद ही रात को मूर्त रूप दिया और उसका प्रतीक बनाया। और इसलिए जब हम इसे जॉन के उदाहरण के रूप में ऐतिहासिक रूप से आधारित फिर भी साहित्यिक रचनात्मकता और उत्कृष्टता और सुंदरता के साथ धार्मिक रूप से प्रेरित दस्तावेज के रूप में देखते हैं, तो हम एलटी जॉनसन द्वारा कही गई बात से सहमत हो सकते हैं। न्यू टेस्टामेंट पुस्तक के अपने परिचय में जॉन का गॉस्पेल शैलीगत रूप से सरल है, फिर भी प्रतीकात्मक रूप से सघन है। मुझे लगता है कि यह हमें जॉन के सुसमाचार की शैली के बारे में बहुत कुछ बताता है और यह कैसे अर्थ बनाता है। तो अब हम इस बात को समझने की ओर आगे बढ़ते हैं कि जॉन हमें यीशु की कहानी कैसे बताता है, और वह ऐसा इस तरह से करता है कि सिनोप्टिक गॉस्पेल की तरह गलील और यरूशलेम में यीशु के सार्वजनिक मंत्रालय पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन जॉन ऐसा करने के कुछ तरीकों में बहुत अनोखा है। सबसे पहले जॉन के पास अपने सुसमाचार के अध्याय 1 छंद 1 से 18 में यह प्रस्तावना या प्रस्तावना है, जहां वह यीशु के बारे में बात करता है, क्योंकि शब्द यीशु को मूसा से जोड़ता है और यीशु को जॉन द बैप्टिस्ट से जोड़ता है। फिर वह प्रभु यीशु के बारे में बात करता है जो परमेश्वर की महिमा का अंतिम व्याख्याकार है, और फिर वह कहानी में बताना शुरू करता है कि यह कैसे काम करता है। इसलिए उन्होंने यीशु का परिचय उस व्यक्ति के रूप में दिया है जिसकी प्रस्तावना में जॉन द्वारा गवाही दी गई है। और अध्याय एक श्लोक 19 में जैसे ही कथा शुरू होती है, इसका पहला भाग जॉन के बारे में है। तो हम जॉन द बैप्टिस्ट के मंत्रालय के बारे में अध्याय एक पद 19 से चलते हैं और कैसे जॉन के शिष्य यीशु के अनुयायियों के पास आते हैं। गलील के काना में पानी को शराब में बदलने का चमत्कार करने के बाद यीशु यरूशलेम जाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास घटनाओं की एक श्रृंखला है जो अध्याय 12 के अंत तक सार्वजनिक रूप से चलती रहती है। इस समय के दौरान यीशु गलील और यरूशलेम के बीच कुछ बार आया जाया, और इस अर्थ में बहुत कुछ वह सामग्री यीशु के जीवन की उसी अवधि का वर्णन करती है जैसा कि सिनोप्टिक गॉस्पेल करते हैं। हालांकि उस सामग्री का अधिकांश भाग सिनोप्टिक गॉस्पेल में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। फिर हमारे पास वह है जिसे हम यीशु का निजी मंत्रालय कह सकते हैं, जो भीड़ के लिए उनके द्वारा किए गए दृश्य संकेतों से हटकर अध्याय 13 से 17 में अपने शिष्यों को भगवान की महिमा दिखाने के तरीके में बदल जाता है। इसे कभी कभी ऊपरी कमरे का प्रवचन भी कहा जाता है, लेकिन अपर रूम शब्द सिनोप्टिक गॉस्पेल का शब्द है, न कि स्वयं जॉन का। इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि हमें इसे अपर रूम कहना चाहिए। दूसरी ओर इसे विदाई प्रवचन कहा जाता है, और यह वास्तव में काम नहीं करता है क्योंकि यीशु शिष्यों को आश्वासन देते हैं कि वह दूर नहीं जा रहे हैं, वह वापस आ रहा है। वह आत्मा के माध्यम से कैसे वापस आ रहा है, यह समझना थोड़ा कठिन है। शायद हम बाद के वीडियो में इसके बारे में अधिक बात करेंगे। इसलिए यदि हम इसे विदाई प्रवचन कहते हैं, तो हम संभवतः इसे ऊपरी कक्ष प्रवचन कहने की तुलना में जॉन की शब्दावली के थोड़ा करीब होंगे। तो इस सामग्री में हम यीशु को अपने प्रस्थान के लिए शिष्यों को तैयार करते हुए देखते हैं। वह उन्हें उनकी स्वयं की सेवा की प्रकृति समझाने और उन्हें आध्यात्मिक शुद्धि के बारे में सबक सिखाने के लिए उनके पैर धोता है। वह उनसे कहता है कि यद्यपि वह जा रहा है, दिलासा देने वाला सहायक वकील आएगा, तथापि हम ग्रीक शब्द पैराक्लेटोस का अनुवाद करना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा तब वहां से शुरू करेगी जहां यीशु ने उनके जीवन को अनिवार्य रूप से छोड़ा था, और वह उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रवचन के उस भाग को समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से हमारे पास जॉन अध्याय 17 में यीशु की अद्भुत प्रार्थना है, जो बाइबल में शामिल अद्भुत पुस्तक में सबसे अद्भुत अध्यायों में से एक प्रतीत होती है। इसलिए अध्याय 1 से 12 में यीशु की सार्वजनिक सेवकाई और अध्याय 13 से 17 में निजी सेवकाई का अनुसरण करते हुए हमारे पास जुनून का विवरण है। यहीं पर जॉन वापस आता है और अधिक से अधिक सिनोप्टिक परंपरा का पालन करता है और वहां मौजूद कई घटनाओं के समानांतर विवरण रखता है। तो जैसा कि आप कहानी जानते हैं, यीशु ने अभी कहा है कि उन्हें दुनिया में चिंतित नहीं होना चाहिए, जॉन 16:33, क्योंकि उसने दुनिया पर विजय पा ली है। वह संसार पर कैसे विजय प्राप्त करता है? वह गिरफ्तार होकर दुनिया पर विजय प्राप्त करता है, जो दुनिया पर विजय पाने का एक अजीब तरीका लगता है। उसे गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया, उसे सूली पर चढ़ाया गया, फिर भी वह मृतकों में से जी उठा। तो ईस्टर उस विजय की प्रकृति को दर्शाता है जिसके बारे में यीशु बात कर रहे हैं, और अध्याय 20 में उस पुनरुत्थान कथा के बाद हमारे पास वह घटना है जहां थॉमस यीशु से मिलने के लिए वहां नहीं थे और संदेह था कि वह वास्तव में पुनर्जीवित हो गए थे। तो यीशु अगली बार आते हैं और थॉमस से मिलते हैं और कहते हैं, मैं यहां हूं, अब बेहतर होगा कि आप इस पर विश्वास करें। थॉमस कहते हैं, मैं करता हूं, मैं इसे प्राप्त करता हूं, मेरे भगवान और मेरे भगवान। इसलिए हमारे पास जॉन अध्याय 20 के अंत में इस आशय की संपादकीय टिप्पणी है कि यीशु ने शिष्यों की उपस्थिति में कई अन्य संकेत दिखाए जो यहाँ इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप विश्वास कर सकें और आप उसके नाम पर जीवन हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि जॉन अध्याय 20 श्लोक 31 में उस बिंदु पर पर्दा नीचे आ जाता है और किताब खत्म हो जाती है। वास्तव में मुझे लगता है कि अगर हम जॉन का सुसमाचार पढ़ रहे थे और अध्याय 21 अगले पृष्ठ पर शुरू हुआ था, तो हम अध्याय 20 पद 31 के अंत में भी रुक सकते थे और सोच सकते थे कि हमने किताब पूरी कर ली है। लेकिन हमारे पास यह अतिरिक्त अध्याय है जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इसे किसी बात के लेखक ने जोड़ा है। मैं इसके बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं हूं, लेकिन हम इसे उपसंहार कह सकते हैं। जॉन अध्याय 21 में उपसंहार हमें अनिवार्य रूप से बताता है कि यीशु पतरस और उसके शिष्यों को दिखाई देते हैं जब वे फिर से गलील में मछली पकड़ रहे थे और यीशु ने पतरस से तीन बार पूछकर उसे मौके पर ही खड़ा कर दिया कि क्या वह उससे प्यार करता है। और हर बार जब पतरस पुष्टि करता है कि वह उससे प्यार करता है, तो यीशु उससे दोहराता है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लोगों का ख्याल रखना, तुम मेरी भेड़े चराते हो, तुम मेरे झुंड का चरवाहा हो। इसलिए पीटर को मूल रूप से मसीह के प्रेरित के रूप में उनके मंत्रालय में पुनः पुष्टि की गई है और प्रिय शिष्य भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां आता है और वह यह पुष्टि करते हुए हस्ताक्षर करता है कि उसकी गवाही वास्तव में सच है। वह और अधिक लिख सकते थे, लेकिन पूरी दुनिया में वे सभी पुस्तकें नहीं समा सकती थीं जिन्हें लिखा जाना चाहिए था। तो इस प्रकार जॉन का सुसमाचार पत्रस के बारे में इस उपसंहार के साथ समाप्त होता है जो उसके मंत्रालय में उसकी पुष्टि करता है। पुस्तक में प्रस्तावना और उपसंहार के साथ अनिवार्य रूप से एक सार्वजनिक और निजी खंड है। इसे थोड़ा और अधिक दृष्टि से देखने पर मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि जॉन के सुसमाचार में वह है जिसे कई विद्वान महिमा की पुस्तक कहते हैं, अध्याय 13-17 जो संकेतों की पुस्तक यीशु के सार्वजनिक मंत्रालय का अनुसरण करता है। तो प्रस्तावना और उपसंहार एक तरह से इन दो पुस्तकों, इन दो खंडों, यदि आप चाहें तो एक तकनीकी शब्द का उपयोग कर सकते हैं, अध्याय 1-12 तक जो यीशु के संकेतों पर जोर देते हैं और अध्याय 13-17 जो कि मूल रूप से दिखाता है कि वह अपने शिष्यों को ईश्वर की महिमा कैसे समझाता और प्रकट करता है। हम शायद इसमें यह अंतर्दृष्टि जोड़ सकते हैं कि जॉन ने यह पुस्तक क्यों लिखी, इसका कारण अध्याय 20 के अंत में स्पष्ट किया गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि जॉन की चाबी पिछले दरवाजे पर छिपी हुई है। तो इससे हमें एक अच्छा अंदाजा मिलता है कि जॉन ने क्यों और कैसे लिखा है। वह बहुत सी बातें कह सकता था जिसे उसने न कहने का निर्णय लिया, जिसे उसने छोड़ दिया क्योंकि वह जिसे संकेत कहता है उस पर जोर देना चाहता था। संकेत महत्वपूर्ण हैं। वे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो घटित हुई, जो इंगित करती हैं कि यीशु वास्तव में कौन है। और इसलिए जो चीजें वह हमें बताता है, छोटे छोटे संक्षिप्त विवरण, छोटे प्रसंग, अध्याय 1-12 में वह जिन व्यक्तियों के संपर्क में आता है, वे मुझे लगता है प्रस्तावना के केंद्र में मौजूद सच्चाई को दर्शाने के लिए मौजूद हैं। प्रस्तावना का सार यह है कि वह अपने में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। हमने तब जॉन के सुसमाचार के सार्वजनिक भाग में अध्याय 1-12 पढ़ना शुरू किया और हम इन सभी अलग अलग व्यक्तियों को देखते हैं जिनसे यीशु का सामना होता है। कुछ उसे ग्रहण करते हैं, कुछ नहीं। कुछ लोग परमेश्वर की संतान बनने के लिए अधिकृत हैं और कुछ नहीं। और इसलिए इसे पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हम अध्याय 20 श्लोक 30 और 31 में क्या पढ़ रहे हैं। जॉन ने हमें ये सभी शब्द चित्र, ये सभी लोग दिए हैं जिनका यीशु ने सामना किया था, ताकि हमें चित्रित किया जा सके और हमें दिखाया जा सके कि यह कैसा है, यह क्या है। इसका मतलब है कि जब वह अध्याय 1 श्लोक 12 में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। इसलिए यदि हम इन महत्वपूर्ण घटनाओं, इन संकेतों को देखते हैं और हम जॉन के सुसमाचार में यीशु के महत्व के बारे में सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि साथ हैं और वे अपनी शक्ति के संदर्भ में एक तरह से बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं और उनकी चमत्कारी प्रकृति के संदर्भ में। पहला, निश्चित रूप से अध्याय 2 में गलील के काना में पानी का शराब में परिवर्तन है। यह दिलचस्प है कि यह गलील में यीशु का पहला चमत्कार माना जाता है और वह इसे काफी कम तरीके से करता है। वह वास्तव में किसी को भी यह जानने नहीं देता कि वह यह कैसे कर रहा है। एकमात्र लोग जो जानते हैं कि उसने पानी को शराब में बदल दिया, वे लोग हैं जो शुरुआत में उसके लिए पानी के बड़े कंटेनर लाए थे। ऐसा करने के इस संक्षिप्त तरीके का कारण यह है, जैसा कि यीशु ने उस कथा की शुरुआत में अपनी माँ से कहा था, उसका समय अभी तक नहीं आया था। वह उस समय उस संबंध में खुद पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास नहीं कर रहा था। अगली चीज जिसे संकेत कहा जाता है, वह अध्याय 4 के अंत में शाही अधिकारी के बेटे का उपचार है और उस घटना को अध्याय 2 में इस कहावत के साथ जोड़ा गया है कि यह दूसरा संकेत है जो यीशु ने गलील में किया था। तीसरा, 5 पोर्टिको वाले पूल में लकवाग्रस्त व्यक्ति का उपचार है, जिसे हम यरूशलेम में बेथेस्डा पूल के रूप में पहचानते हैं, जो मंदिर परिसर के उत्तरी छोर पर होगा, जैसा कि हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। चमत्कार के पैमाने पर चीजें शायद कुछ अधिक चमत्कारी होती जा रही हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो पानी को शराब में बदलने से लेकर एक शाही अधिकारी के बेटे को ठीक करने तक, एक ऐसे व्यक्ति को ठीक करना जो चल फिर नहीं सकता, लकवाग्रस्त हो। अगली चीज जो यीशु करते हैं, जिसे आम तौर पर एक संकेत के रूप में पहचाना जाता है, वह जॉन अध्याय 6 में भीड़ को खाना खिलाना है, जो यीशु का एकमात्र चमत्कार है जिसे सभी 4 सुसमाचारों में वर्णित किया गया है। इसलिए भीड़ का उपचार उन्हें याद दिलाता है और इसका उद्देश्य उन्हें जंगल में मन्ना की याद दिलाना है, और यीशु सिखाते हैं कि यह वास्तव में मूसा नहीं था जिसने उन्हें मन्ना खिलाया था, बल्कि यह भगवान था जिसने उन्हें मन्ना भेजा था। यीशु स्वयं एक नए और बेहतर प्रकार का मन्ना है। तो एक थैले की सामग्री से हजारों लोगों को खिलाने वाली रोटियों और मछलियों का गुणन बहुत आश्चर्यजनक है। अगली घटना जिसे एक संकेत के रूप में वर्णित किया गया है, वह ठीक इसके बाद है, गलील सागर के पानी पर चलना। शिष्य नाव में आगे बढ़ते हैं। यीशु भीड़ से बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए हैं और तूफान के चमत्कारिक ढंग से शांत होने पर वह उनसे दोबारा मिलते हैं और वहां उनसे मिलते हैं और पानी को शांत करते हैं और चमत्कारिक ढंग से फिर से किनारे पर आ जाते हैं। केवल ईश्वर ही वह है जो तूफान को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए इस चमत्कार में यीशु स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला भाग जन्म से अंधे युवक को ठीक करना होगा, जो मुझे लगता है आश्चर्यजनक चीजों के मामले में एक पायदान ऊपर ले जाता है। अंधेपन की स्थिति है जिसमें व्यक्ति कभी देख नहीं पाता है। यह एक दिलचस्प कहानी है क्योंकि यह उस समय के पूर्वाग्रह के बारे में बताती है कि वे मानते थे कि जो कोई भी बीमार था उसने पाप किया है, और यीशु समझाते हैं कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं है। और यह अध्याय फरीसियों की विडंबना दिखाने के लिए पैदा हुए अंधे व्यक्ति का उपयोग करके समाप्त होता है, जो सोचते हैं कि वे देखते हैं लेकिन वास्तव में यीशु में मौजूद प्रकाश को देखने से इनकार करते हैं, जबकि उस युवा व्यक्ति के विपरीत जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से देखने में सक्षम था। फिर जैसे जैसे हम जॉन में अंतिम चमत्कार की ओर बढ़ते हैं, हम अधिक से अधिक चमत्कारी होते जा रहे हैं, जो अध्याय 11 में लाजर को मृतकों में से जीवित करना है। यीशु के विजी प्रवेश और उसके प्रारंभिक समय के बारे में जॉन की कथा में लाजर बड़ा दिखता है। अपनी अंतिम यात्रा पर यरूशलेम में, क्योंकि लाजर के उपचार के कारण, लाजर के पुनरुद्धार के कारण बहुत से लोग यीशु का अनुसरण कर रहे थे, और इसलिए विजी प्रवेश लगभग लाजर के साथ यीशु का विजी प्रवेश है, शाब्दिक रूप से नहीं, लेकिन लगभग उसी तरह से, क्योंकि इससे यीशु की लोकप्रियता बढ़ती है। और फरीसियों और यहूदी नेताओं ने फैसला किया कि वे लाजर को भी मार सकते हैं, जो काफी विरोधाभासी लगता है, क्योंकि यीशु कहते हैं कि बस उसे मृतकों में से उठाओ। वे कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम उसे मार डालेंगे। तो वहां जाना एक तरह की अतार्किक बात है। इसलिए लाजर का पुनर्जीवित होना एक बहुत बड़ी बात है, जो जॉन अध्याय 11 में यीशु को अंतिम बार यरूशलेम में लाता है। तो जॉन के सुसमाचार में संकेतों का बहुत महत्व है। एक और चीज जो जॉन के सुसमाचार में बहुत समान है, वह है कार्य शब्द। यीशु के कार्य कई मायनों में संकेतों के समानांतर हैं, और इसलिए जॉन इन दोनों शब्दों का उपयोग करता है और उनमें से प्रत्येक के बारे में बहुत कुछ कहता है। यीशु अक्सर कहते थे कि जो काम मैं करता हूँ वे मेरे काम नहीं हैं, ये वे काम हैं जिन्हें करने के लिए पिता ने मुझे दिया है। इसलिए यदि आपको मेरा काम पसंद नहीं है तो आप मेरे पिता को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ जो मेरे पिता ने मुझे नहीं दिया है और मुझे करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। जॉन के सुसमाचार में संकेत काफी आश्चर्यजनक मामला है, क्योंकि उनका विश्वास से बहुत कुछ लेना देना है, और जॉन के सुसमाचार में संकेतों और विश्वास के बीच एक जटिल संबंध है। सबसे पहला चिन्ह जो यीशु ने गलील के काना में किया, पेरिकोप, यह कहकर समाप्त होता है कि उसने यह चिन्ह दिखाया और उसने अपनी महिमा प्रकट की और उसके शिष्यों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु यरूशलेम को गया और वहां उसने चिन्ह दिखाए। वे निर्दिष्ट नहीं हैं कि वह क्या कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप जॉन अध्याय 2 के अंत में आते हैं, आप देखते हैं कि कई लोगों ने यीशु पर विश्वास किया था जब वह यरूशलेम में थे, जब उन्होंने उनके संकेतों को देखा था। इसके साथ एकमात्र समस्या यह है कि अगला श्लोक कहता है कि यीशु ने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दिया, उसने अपने आप को उनके प्रति समर्पित नहीं किया, क्योंकि वह मानवता को जानता था। वह जानता था कि लोग कैसे हैं, वह जानता था कि लोगों में क्या है। तो यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि इसका क्या मतलब है। इसे थोड़ा बेहतर समझने के लिए अध्याय 3 हमें बताता है कि एक आदमी था जो रात में यीशु के पास आया था, उसका नाम निकुदेमुस था, और उसने यीशु से पहली बात यह कही थी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए शिक्षक हैं, या आप ये संकेत नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि निकुदेमुस उस प्रकार का व्यक्ति था जिसका वर्णन सामान्य तौर पर जॉन अध्याय 2 के अंत में किया गया है। निकुदेमुस उस अर्थ में यीशु में विश्वास करने वाला था, शायद इस अर्थ में आस्तिक नहीं था कि हम उसे एक आस्तिक के रूप में देखना चाहेंगे। लेकिन निकोडेमस के साथ कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जॉन आगे बढ़ता है। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे। यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि जॉन में संकेतों और विश्वास के बारे में यह असहज बात है। अध्याय 4 में यीशु इस बात से नाराज है कि शाही अधिकारी यीशु पर तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक वह कोई संकेत नहीं देख लेता। वह उपचार चाहता है और इसलिए यह थोड़ा परेशान करने वाला है। अध्याय 6 में यीशु उन लोगों से कहते हैं जिन्होंने उन्हें देखा, जिन्होंने भोजन, चमत्कारी भोजन प्राप्त किया, कि तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि तुमने संकेत देखा, बल्कि इसलिए कि तुमने खाया। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने संकेत देखा या उन्होंने संकेत देखा और क्या वे वास्तव में यीशु पर विश्वास करते हैं या क्या वे बस यही चाहते हैं कि यीशु वही बने जो वे चाहते हैं। वे यीशु के बारे में अपनी पूर्वसमझ की पुष्टि करने के लिए संकेत का उपयोग कर रहे हैं कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ उनकी भौतिक जरूरतों की देखभाल करेगा। आखिरकार दूसरे मंदिर यहूदी धर्म में कई उदाहरणों में उन्होंने यही सोचा था कि मसीहा वही था। मसीहा वह होगा जो रोमनों को उनकी पीठ से हटा देगा और उन्हें डेविड साम्राज्य के गौरव में वापस लाएगा। लेकिन यीशु उस तरह के मसीहा नहीं थे। तो उसने अध्याय 6 में उनसे कहा, तुम मेरा पीछा इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुमने लक्षण देखे, बल्कि इसलिए कि तुमने खाया और तुम्हारा पेट भर गया। तो इस तरह का निष्कर्ष निकलता है जैसा कि हमने पहले अध्याय 20 में देखा था, जहां थॉमस एक अर्थ में एक संकेत को देखने के बाद यीशु पर विश्वास करने लगता है। यीशु का पुनरुत्थान शायद जॉन में अंतिम संकेत है। और यीशु ने थॉमस से बात की और कहा, क्योंकि तुमने देखा है, तुमने विश्वास किया है, धन्य हैं वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। फिर वह यीशु ने अपने शिष्यों की उपस्थिति में कई अन्य चिन्ह दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। तो थॉमस जो संकेत प्रतीत होता है उसकी सहायता से देखता है। यीशु उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो बिना कोई संकेत देखे विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में देखते हैं और विश्वास करते हैं। ऐसे लोग हैं जो कुछ अर्थों में देखते हैं और विश्वास करते हैं, जिन्हें हम शायद वास्तविक विश्वास से कमतर मानते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यीशु के किसी भी प्रकार के चमत्कारी कार्यों को देखने के अलावा आत्मा द्वारा विश्वास में लाया जाता है। किसी भी घटना में जब हम जॉन के सुसमाचार का अध्ययन करते हैं तो हमें संकेतों और विश्वास के बीच के संबंध को नोटिस करने का बार बार अवसर मिलेगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें इस पर दोबारा विचार करने का कुछ अवसर मिलेगा। इसलिए जैसे ही हम जॉन पर यह पहला वीडियो समाप्त करते हैं, हम इस पर कुछ अच्छे स्रोतों को इंगित करना चाहते हैं। जॉन के धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए हमारे पास एंड्रियास कोस्टनबर्गर की एक बहुत अच्छी नई पुस्तक है, जिसका नाम थियोलॉजी ऑफ जॉन्स गॉस्पेल एंड लेटर्स है। जॉन के धर्मशास्त्र और समझ पर एक और उपयोगी पुस्तक जॉन और ईसाई धर्मशास्त्र के सुसमाचार पर रिचर्ड बॉखम और कार्ल मोजर द्वारा संपादित की गई है। मूडी स्मिथ द्वारा इस पर एक अच्छा और अधिक पठनीय दृष्टिकोण थियोलॉजी ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जॉन। जॉन के गॉस्पेल के अध्ययन में अधिक प्रभावशाली पुस्तकों में से एक जे लुई मार्टिन की है। मार्टिन का मानना है कि जॉन का गॉस्पेल उन यहूदी लोगों के मुद्दे पर बात करने के लिए लिखा गया था जिन्हें यीशु में विश्वास के कारण आराधनालय से बाहर निकाल दिया गया था। जॉन में उन कुछ स्थानों की ओर इशारा किया गया था जहां ऐसा होता है, जिसमें अध्याय 9 भी शामिल है, जहां वह आदमी था जन्मांध ठीक हो गया। इसलिए जब आप भविष्य के बारे में सोचें और जॉन के सुसमाचार और उसके धर्मशास्त्र का अध्ययन करें तो उन पुस्तकों और अन्य को ध्यान में रखें। कुछ विषय जिनके बारे में हम यहां अपने पहले व्याख्यान के अंतिम भाग के रूप में बात करेंगे, वे कुछ प्रमुख जोहानाइन विषय और विचार हैं। बेशक जॉन ने प्रस्तावना में यीशु को ईश्वर का अंतिम रहस्योद्घाटन करता बताया है। यूहन्ना 1:1 आदि शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द परमेश्वर था, यह आदि में परमेश्वर के साथ था, उसमें ज्योति थी और ज्योति जगत का जीवन थी। निस्संदेह श्लोक 14 में भी एक कथन है, आरंभ में यह कहने के बाद कि अध्याय 1:1 में शब्द था, अध्याय 1:14 में कहा गया है, और शब्द को मूर्त रूप दिया गया। तो यीशु न केवल मूल निर्माता हैं, यीशु ईश्वर के अंतिम प्रकटकर्ता हैं। निस्संदेह इसी तरह के बयान जॉन के पहले पत्र की पहली कविता में शब्द के रूप में यीशु के बारे में, साथ ही प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में भी हैं। इसलिए जॉन को सही ढंग से पढ़ने के लिए हमें इसे समझने की जरूरत है जो यीशु को अंतिम रूप में प्रस्तुत करता है, ईश्वर को प्रकट करने वाला। यीशु ने हमें पिता दिखाया है। फिलिप पूछता है, हमें पिता दिखाओ और हम खुश होंगे, कृपया ऐसा करो। यीशु कहते हैं, यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को भी देखा है, अध्याय 14। तो इसे जांचें। जॉन में एक और महत्वपूर्ण बात वह तरीका है जिसमें वह नैतिक द्वैतवाद के संदर्भ में ध्रुवीय विपरीतताओं की बात करते हैं। मैं इसे नैतिक द्वैतवाद कह रहा हूं, किसी भी अर्थ में सत्तामूलक द्वैतवाद या आध्यात्मिक द्वैतवाद नहीं, बल्कि विचारों का द्वैतवाद। निःसंदेह शैतान द्वारा परमेश्वर का विरोध किया जाता है। इसे अध्याय 8 में स्पष्ट रूप से देखें, जहां यीशु कहते हैं, मैं अपने पिता के काम करता हूं, तुम अपने पिता के काम करते हो। वे विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारा पिता इब्राहिम है। यीशु कहते हैं, नहीं, तुम्हारा पिता शैतान है, क्योंकि तुम इब्राहिम की तरह नहीं रहते। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते जैसे इब्राहिम ने मुझ पर विश्वास किया होगा। और इसलिए हमारे पास ईश्वर और शैतान के बीच यह बहुत मजबूत द्वंद्व है। इस प्रकार हमारे पास स्वर्ग और पृथ्वी और उन स्थानों में पाए जाने वाले संबंधित मूल्यों के बीच एक मजबूत द्वंद्व है। यह एक प्रकार से प्रकाश और अंधकार का प्रतीक और प्रतीक है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और जिस तरह से जो लोग यीशु के माध्यम से भगवान के आज्ञाकारी हैं, वे प्रकाश में चल रहे हैं। जो लोग यीशु के सुसमाचार की सच्चाई से इनकार करते हैं, वे अंधकार में चल रहे हैं। हमने कुछ समय पहले यहूदा और उसके प्रस्थान पर चर्चा की थी। यहाँ कुछ अन्य पाठ भी हैं जो इससे संबंधित हैं। यदि आप उनका अनुसरण करना चाहते हैं तो हम अभी उन पर अधिक मेहनत नहीं करेंगे। तो हमारे पास ईश्वर को प्रकट करने वाले यीशु हैं। ईश्वर का यह रहस्योद्घाटन नैतिक द्वैतवाद के एक पैटर्न में दिखाया गया है, और यह इसराइल के साथ ईश्वर के व्यवहार के इतिहास के लोगों से भी जुड़ा हुआ है। तो यीशु का अग्रदूत जॉन द बैप्टिस्ट है। जॉन द बैप्टिस्ट वह है जो प्रकाश नहीं है, लेकिन वह प्रकाश का गवाह है, भले ही बाद में यीशु ने उसे एक प्रकाश के रूप में संदर्भित किया जो एक पल के लिए चमक गया। जॉन ने स्वयं को प्रकाश के रूप में नहीं देखा। यीशु का प्रोटोटाइप मूसा था, और जॉन अध्याय 1 में मूसा की बहुत सूक्ष्म टाइपोलॉजी चल रही है, जैसा कि हम अब से कुछ वीडियो में देखेंगे। इसलिए मूसा की ईश्वर को देखने और ईश्वर को अधिक निकटता से अनुभव करने की इच्छा, ताकि वह ईश्वर के लोगों का नेतृत्व कर सके, विशेष रूप से निर्गमन अध्याय 33 और 34 में, मुझे लगता है यहाँ जॉन अध्याय 1 में जो चल रहा है उसके लिए काफी दिलचस्प पृष्ठभूमि बन जाती है। अध्याय 5 में लोगों से कहा गया है कि वे कहते हैं कि वे मूसा में विश्वास करते हैं, लेकिन यदि वे मूसा में विश्वास करते, यदि वे धर्मग्रंथ में विश्वास करते, तो वे यीशु में विश्वास करते, क्योंकि मूसा ने यीशु के बारे में लिखा था। तो यीशु स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि तुम मूसा को सही समझोगे तो तुम मुझे भी पाओगे। यदि तुम्हें मैं नहीं मिलता तो तुम्हें वास्तव में मूसा भी नहीं मिलता। तो यीशु उन्हें जो दिखा रहा है वह वही है जो मूसा देखना चाहता था। मूसा को परमेश्वर का चेहरा देखने की लालसा थी। निर्गमन 33 से 34 में मूसा को ईश्वर का आंशिक रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ, लेकिन यीशु में हमारे पास पूर्ण विकसित जीवंत रंगीन HDTV है। यदि आप चाहें तो ईश्वर का रहस्योद्घाटन और यीशु ईश्वर को उजागर कर रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक 18 के अनुसार, यदि आप चाहें तो वह वही है जो पिता की गोद में है। बहुत दिलचस्प शब्द जो मुझे लगता है कि शायद यह दिखाकर सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है कि यीशु वह है जिसे पिता ने गले लगाया था। यीशु पिता के आलिंगन में है। यीशु ईश्वर के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध में है। इसलिए जॉन के पूरे सुसमाचार में यीशु दिखाते हैं कि ईश्वर कौन है, और यदि आपने उसे देखा है तो आपने पिता को देखा है, और आपको यह समझने का मौका मिला है कि ईश्वर की महिमा क्या है। अंत में जॉन के सुसमाचार में एक और जोर निश्चित रूप से वकील, सहायक, दिलासा देने वाले पर है। यदि आप चाहें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैराक्लेटोस शब्द का अनुवाद कैसे करते हैं। आत्मा का उल्लेख अध्याय एक में ही किया गया है, जहां जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि मुझे बताया गया था कि जिस पर मैं आत्मा को उतरते और ठहरते हुए देखता हूं। जॉन कहता है, जो मुझे दिलचस्प लगता है वह है जिस पर आत्मा उतरती है और बनी रहती है, यह परमेश्वर का मेमना है। हमें यूहन्ना अध्याय तीन के अंत में बताया गया है कि वह बिना मापे आत्मा देता है। जाहिरा तौर पर वह कविता थोड़ी अस्पष्ट है, लेकिन जाहिरा तौर पर इसका तात्पर्य पिता द्वारा यीशु को बिना माप के आत्मा देने से है। संभवतः यीशु द्वारा अपने लोगों को बिना माप के आत्मा देने से, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर द्वारा यीशु को समर्थन देने की अधिक संभावना है, पिता द्वारा आत्मा प्रदान करना। असीमित रूप में आत्मा के साथ पुत्र। जॉन में पवित्र आत्मा की इस पूरी चर्चा में एक और मुख्य पाठ जॉन 7 श्लोक 37 से 39 है। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, मुझे लगता है कि आत्मा के स्रोत के रूप में यीशु की बात करता है। यह वास्तव में यीशु के अस्तित्व से है कि आत्मा चर्च में प्रवाहित होती है। पाठ यूहन्ना 7 श्लोक 39 में यह भी कहता है, पवित्र आत्मा अभी तक नहीं दिया गया था क्योंकि यीशु को अभी तक महिमा नहीं मिली थी। बेशक यह पाठ आत्मा के अस्तित्व के बारे में नहीं, बल्कि लोगों के लिए आत्मा की सेवकाई के बारे में बात कर रहा है, और इसलिए हम इसे अध्याय 14 से 16 में आगे समझाते हुए पाते हैं, जहां यीशु अध्याय 16 में आश्चर्यजनक बयान देते हैं कि यह आपके लिए समीचीन है कि मैं चला जाऊं। मैं बस यही सोचता हूं कि यीशु के शिष्यों को यह कितना पागलपन भरा लगा होगा कि उसने उनसे कहा, यदि मैं चला जाऊं तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मूलतः वह यही कह रहा है। वह कहता है, मैं न जाऊंगा तो दिलासा देने वाला, वकील करने वाला नहीं आएगा। दिलासा देने वाला वह व्यक्ति होगा जो न केवल आपको बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाएगा कि मैं क्या सिखा रहा हूं, बल्कि वह भी होगा जो दुनिया को दोषी ठहराएगा। तो जीसस कहते हैं, इतना नहीं कि मैं जा रहा हूं और तुम अब अनाथ हो जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूं। वह कहते हैं कि मैं बस उस तरीके को बदल रहा हूं जिसमें मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। मैं आपके साथ शारीरिक रूप से उपस्थित हूं, अब मैं आत्मा के द्वारा तुम्हारे साथ उपस्थित रहूंगा। आत्मा मूल रूप से आपके लिए वही होगी जो मैं थी, और आपकी आवश्यकताओं को वैसे ही पूरा करेगी जैसे मैंने उन्हें पूरा किया है। तो आत्मा एक अर्थ में शिष्यों के साथ यीशु की निरंतर उपस्थिति है। आत्मा का काम अनिवार्य रूप से शिष्यों को वह याद दिलाना है जो यीशु ने उन्हें पहले ही बताया है, और उन्हें यीशु से नई चीजें सिखाना है। तो आत्मा क्रिस्टोसेंट्रिक है। आत्मा इस बारे में है कि यीशु कौन थे, और आत्मा उनके लिए यीशु का वचन है, और वे आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब यीशु प्रस्थान करते हैं और अध्याय 20 श्लोक 22 में आत्मा के बारे में अपने अंतिम शब्दों में से एक पर जाने की योजना बनाते हैं, तो अनिवार्य रूप से यह है कि जैसे पिता ने उन्हें भेजा है, वैसे ही वह उन्हें भेज रहे हैं। और निस्संदेह वह ऐसा तब तक नहीं कहता जब तक वह उनसे नहीं कहता, पवित्र आत्मा प्राप्त करो। तो आप सोच रहे होंगे कि इसे कितना दबाया जाए। जॉन के सुसमाचार में सीधे तौर पर यह उल्लेख नहीं है कि जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु को बपतिस्मा दिया था। यह केवल इतना कहता है कि यूहन्ना को बताया गया था कि जिस पर वह आत्मा को उतरते हुए देखेगा वही आत्मा से बपतिस्मा देगा। फिर भी हम जानते हैं कि यीशु को अपने मिशन के लिए पिता से आत्मा प्राप्त हुई थी। इसलिए जैसे यीशु चर्च को उसके मिशन के लिए तैयार करते हैं, वैसे ही वह चर्च को अपनी आत्मा से संपन्न करते हैं। हमारे पास जॉन अध्याय 22 में इस पाठ के बारे में थोड़ा और बात करने का कुछ कारण होगा कि यह पेंटेकोस्ट पर नए नियम के बाइबल धर्मशास्त्र से कैसे जुड़ा है, लेकिन हम इसे किसी और समय के लिए बचाकर रखेंगे। इसलिए हमने इस व्याख्यान में, इस पहले व्याख्यान में जॉन की समग्र शैली और साहित्यिक सामग्री और धर्मशास्त्र का संक्षेप में परिचय देने का प्रयास किया है। एक व्याख्यान में ऐसा कुछ करना, मुझे लगता है, यह सब पूरा करने की कोशिश करना पागलपन है। आपने शायद पहले यह कहावत सुनी होगी कि जॉन की गॉस्पेल इतनी सरल किताब है कि एक बच्चा भी इसे समझ सकता है, फिर भी यह इतनी जटिल किताब है कि विद्वान कभी नहीं सोचते कि उन्होंने इसे समझ लिया है। कभी कभी इसकी तुलना नदी में डूबते हुए हाथी जैसे बड़े जानवर से की जाती है। तो शायद आप इस पहले वीडियो से ही इसे थोड़ा समझ रहे हैं कि जब हम जॉन के सुसमाचार का परिचय दे रहे हैं तो हम बस यही कर रहे हैं। हम तो बस इसका परिचय दे रहे हैं। हम इसे अगले 20 वीडियो में भी पेश करेंगे क्योंकि निश्चित रूप से वहां बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे हम कवर नहीं कर पाएंगे और जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और जैसे जैसे हम जॉन के सुसमाचार का अध्ययन करना जारी रखेंगे, भगवान हमें इससे और अधिक चीजें दिखाना जारी रखेंगे जो आने वाले दिनों में उनकी महिमा और हमारी भलाई के लिए होंगी। तो पहले व्याख्यान के लिए धन्यवाद। हमने इसका आनंद लिया है। मुझे आशा है आपके पास भी होगा।